जय राधा माधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा करते हुए 4 मई 2017 को दिया गया।
गोपी जाना बाला भा भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उसी ग्वाले का दर्शन प्राप्त किया और उस ग्वाले ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हें एक सेवा देना चाहता हूँ। मुझे मुसलमानों के हत्याचार से बचाने के लिए जाइयों ने छिपा दिया है इन झाड़े के नीचे, मुझे वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। आप लोगों को गर्मी लग रही है आजकल, तो अंदाजा लगा सकते हो गोपाल को कितनी गर्मी लगी होगी। वो अंडरग्राउंड थे, अभी आप ओवरग्राउंड हो रहा तो भी कहा जाए हम खोद के तुम्हें अंदर बिठाते हैं, आप एक मिनट में देख नहीं पाओगे। तो मुझे वहां से उठा कर मेरी स्थापना करो। 600 साल पूर्व जब मुसलमानों का राज्य था, कई भारत के प्रसिद्ध मंदिर नष्ट हो गए थे और कई सालों में पुजारियों ने बिगड़ा को जयपुर ले गए, इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। वहाँ कई प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं, ऐतिहासिक मूर्तियाँ, राधा गोविंद जी, राधा दामोदर और कई नष्ट हो गई थी। कई जगह पुजारियों ने खोद कर छुपा दिया और भाग गए। ये गोपाल विग्रह इसकी स्थापना हुई थी 5000 साल पूर्व भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन, में क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, बेटे के बेटे के बेटे वंश के द्वारा। तो महाराज पूरी ने देने सुबह ब्रजभाषी को बुलाया और कहा, मुझे सपना आया था और सपने में जमानतपुरी ने देखा कि वही ग्वाला जिसने उन्हें दूर दिया था, वही ग्वाला उनकी उंगली पकड़ कर ले गया है, दिखाने का ही कहाँ छुपे हैं। जमानतपुरी एक तरफ से जब प्रसन्न हुए एक तरफ से दुखी हुए, क्यों प्रसन्न इस दृष्टि से हुए, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था, भगवान खुद आए थे दूध देने के लिए, आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद अनुभव करोगे। पर दुखी इस दृष्टि से उन्होंने भगवान से सेवा ले ली, भगवान के हाथ उनका दूध लिया। तो जो उत्तम कोटि का भक्त है वो केवल सेवा करना चाहता है, लेना नहीं चाहता। हमारी क्या स्थिति है, हम लेना चाहते हैं, हमें अच्छा धंधा दो, ये दो, वो दो, मैं बदली लो अमेरिका का वीजा दो, हम केवल मानना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के घर केवल सेवा करना चाहते हैं। तो आनंद कोई नहीं है, जब सपना सुनाया ब्रिजवासियों को, सबने कहा चलो देखते हैं सच है या नहीं। उन्होंने झाड़ियां काटी ऊपर से, वही स्थान जिसका वर्णन सपने में था उसी स्थान पर खोला, उसी स्थान पर गोपाल विग्रह प्राप्त हुआ। जब उन्होंने गोपाल विग्रह को देखा, सारे ब्रज ब्रजवासी खुशी में नाचने लगे। तो वो विग्रह इतना भारी था कि एक आदमी उठा नहीं पाया, कई भक्तों को मिलकर उठाना पड़ा विग्रह को। और माधनपुरी ने दो दिन के अंदर सारी योजना बना दी, गोपाल की स्थापना करें। हम लोग ब्रह्मोत्सव की स्थापना करते हैं, हमें कई हफ्ते लग जाते हैं तैयारी में। तो माधनपुरी ने दो दिन में तैयारी कर ली, एक बड़े पत्थर को ऑर्डर बनाया, उसके पीछे एक और पत्थर रखा और सारे ब्रिजवासी जो थे सब कुछ सेवा में जोड़ा। तो ब्रिजवासी थे सबने बड़े उत्साह के साथ दान भी दिया और 900 लोगों में गोविंद कुल के जल आया था। गोविंद कुल में जो जल है वो जल है जबकि इंद्र ने स्वीकार किया अपनी हार, सुरावी गाय माता ने सुरावी ने अभिषेक किया था, तो अभिषेक का जल है गोविंद कुल में। 900 लोटे लाए गोविंद कुल जल से, पंचगव्य से भगवान का बड़े धूमधाम के साथ स्थापित किया भगवान। और सारे जो ब्रिजवासी थे उन्होंने देखा कि माधनपुरी ने फिर से अनुकूल उत्सव कर दिया। अनुकूल उत्सव किसने किया था पहले? भगवान ने किया था, गोला लीला अपनी निभाई थी। ब्रिजवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए, सारे ब्रिजवासी सबने दान दिया, गाय खेती दाल। और प्राचीन समय में संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कितनी गायें हैं और कितनी खेती है। आज आप क्या देखते हो, कौन सी मोटर चला रहा है, मर्सिडीज अभी अंदर लोग, कौन सी कंपनी के कपड़े सूट पहना हुआ है ये देखते हो ना। अभी अंदर लोग है उनके यहाँ धनी व्यक्ति होगा। तो प्राचीन समय में खेती और गाय, जैसे नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी, वह 9 लाख गायें सजीव थी गहनों के साथ। तो 2 साल के लिए माधनपुरी के निर्देश में ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। और माधनपुरी खुद हेड पुजारी थे, सारा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे, रात को भगवान को विश्राम कराने के बाद थोड़ा सा दूध पीते थे और सो जाते थे। ये भी उनकी खुराक मिल्क, वो भी भगवान को सुनाने के बाद जैसे 9 बजे आपकी दीदी के दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि 9 बजे क्या होता है, अंदर पुजारी लोग भगवान के वस्त्र बदलते हैं, भगवान को नाइट ड्रेस में सजाते हैं, फिर भगवान को सुलाया जाता है बिस्तर में पौने 10 बजे। आप सुबह 4:30 बजे मंदिर आते हो और पुजारियों को 4 बजे भगवान को जगाना पड़ता है। तो महाराज पूरी भगवान को सुलाते थे, उसके पश्चात थोड़ी सी थोड़ा सा दूध ये बुरा और सारे खुद सेवा करते थे और कई कई को उन्होंने वैष्णव सिद्धांत में दीक्षा दी। महाराज पूरी इस प्रकार 2 साल पूजा चल रही थी। 2 साल के पश्चात भगवान ने वैसे उन्हें सपने में एक और आदेश दिया। भगवान ने कहा, हे माधव पुरी, मैं आज तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुमने मेरी सामना करके मेरी गर्मी कम की है, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तो भगवान को दबाया हुआ था तो वहां तो अंदाजा लगा सकते कितनी गर्मी होगी। अब तो भगवान को ऊपर ले आए थे पर अभी भी गर्मी लग रही है भगवान को। भगवान ने क्या कहा, मेरे लिए क्या लाओ, चंदन लाओ। आपने अनुभव किया होगा, हम चंदन भगवान को लगाते हैं केवल गर्मी के मौसम में, सर्दी में नहीं। हम चंदन लगाते हैं प्रभुपाद को और ऑल्टर में और इस पीना से छोटी मूर्तियों से जाते हैं चंदन से और कई बार बड़ी मूर्तियों को भी। तो भगवान ने मानंदपुरी को कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूं तो मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे चंदन लेकर आओ। माधव पूरी सोचने लगे कैसे जाएं चंदन लाने के लिए। माधव पूरी है पुजारी भी थे, सारी पूजा भी वही कर रहे थे। माधव पूरी ने 2 बंगाली ब्राह्मणों को दीक्षा दी, शिक्षा दी कैसे भगवान की पूजा होती है। माधव पूरी गोवर्धन से चले कहां जाने के लिए, जगन्नाथपुरी पहुंचने के। अंदाजा लगाओ आपको अगर कहा जाए राधा राजधर की खुशी के लिए चंदन लाओ जगन्नाथपुरी से, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। हाँ मैं कितने भक्ति आएगा मुझे कोई नहीं, ठीक है कम से कम आप ईमानदार तो ईमानदार होते। माधव पूरी ने भगवान से यही नहीं कहा, मैं इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगा पैदल। भगवान ने आदेश दिया, कितना कठिन आदेश, पैदल जाओ जगन्नाथ पूरी तक मेरे लिए चंदन लाने के लिए। कम से कम 1000 मील की यात्रा होगी। मानन गोरी गोपाल मेघा की देख सेवा पुजारियों के हाथ छोड़कर आगे बढ़े, कहाँ जाने के लिए, जगन्नाथपुरी। रास्ते में वो रुके देवना धाम में, शायद रास्ते में आता है और यमुना धाम में रुके तो वहां उन्होंने दर्शन लिया राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ का मंदिर है, ऐतिहासिक है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से यमुना आए थे और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उन्होंने देखा राधा गोपीनाथ का विग्रह, बड़े उत्साह से नाचने लगे गाने लगे। और उन्हें याद आया एक प्रसिद्ध कथा जो उन्होंने सुनी थी उनके गुरु महाराज के द्वारा, इसके द्वारा ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी अपने गुरु की प्रशंसा कर देते हैं और ये कथा शिष्य को सुना देते हैं। महाप्रभु जब नाच रहे थे राधा गोपीनाथ का दर्शन लेकर, तो एक खूबसूरत हार राधा गोपीनाथ के हाथों में गिर गया महाप्रभु के गले में। जैसे महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, तो जब मालिन पूरी पहुंचे यमुना में, तो उनके मन में एक भाव आया, उनके मन में एक भाव आया कि अगर मुझे यहाँ जो भोजन भगवान को चुराया जाता है वो चखने का मौका मिले तो मैं लौट कर अपने विद्या के लिए भी ऐसे बनाऊंगा। जैसे भौतिक समाज में हम एक दूसरे से सीखते हैं, इंडियन कंपनियां विदेश में जा आदमियों को भेजती है टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। इस्कॉन का सबसे पहले राधा कृष्ण की स्थापना हुई थी लॉस एंजलिस में, मुझे दुआ करे पापा जी ने उस समय लॉस एंजलिस को इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाया था। और पापा जी खुद समय काट रहे थे लॉस एंजलिस मंदिर में, यहाँ की प्रभा जी ने द्वितीय द्वारकाधीश की स्थापना की थी। और प्रभा जी ने सारे ईश्वर के भक्तों को निमंत्रण दिया, तुम अपने पुजारियों को यहाँ भेजो दीदी वैश्विक सीखने के लिए। ये लॉस एंजलिस में प्रभा जी ने बेस बनाया था। तो मानव कोई उन्होंने भावना प्रकट हुई, अगर मुझे यहाँ खीर चखने का मौका मिल जाए, यमुना में इस राधा गोपीनाथ मंदिर में रोज शाम को 12 खीर के लोटे भगवान को अर्पण किए जाते थे। और ये खीर जो है ऐसा तेज था कि ऐसे लगता था ये खीर स्वर्ग से बनकर आ रही है। उसका नाम क्या था? अमृत खीर। तो माधवनपुरी के मन में भाव कि माधवनपुरी कभी किसी से कोई मांगते तो थे, तो वो अपने मन में सोच रहे थे अगर कोई मुझे खीर चखने को दे दे और बता दे क्या क्या भंडारा बनता है, मैं लौट कर अपने गोपाल ले भी ऐसा बनाऊ। परमानंद पूरी की इच्छा प्रकट हुई, जब भगवान को भोग लग रहा था, समझे पुजारी भोग लगा रहे थे। नियम ये है जब आप भोग बना रहे हैं भगवान का, आपका भाव बना चाहे यह भगवान के लिए बना रहा हूं, यह नहीं इस पे गरी बना रहे हैं 5 मिनट भोग बनाएंगे और खाएंगे हम। ये भाव है, ये भोग भगवान के बन रहे हैं, भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, थोड़ी देर 15 मिनट कम से कम वहाँ रहने देते हैं फिर उठाते हैं। तो माधव पूरी को जब पता लगा कि जो इच्छा थी उनकी ये भोग चखने की, ये भगवान भोग लग रहा था, बड़े शर्मिंदा हो गए और वो चखे बिना गोपीनाथ का मंदिर छोड़कर बाजार में चले गए। क्या करने? भजन करने चले। ईश्वर सर्वभूतानां हे देश रजना देशके, मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूँ। और भगवान जी को मेरे कहते हैं सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मतः ज्ञानम। मेरे द्वारा यादाइश आती है, मेरे द्वारा अपमान भूलने की शक्ति आती है। जो याद करना चाहते हैं भगवान को और प्रेरणा में भगवान से आती है। ये भगवान को भूलना चाहे भगवान से आती है। आप दौड़े भगवान हमें भूलने की शक्ति क्यों देते, ये भगवान ने सबको छूट दी है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने खीर का एक प्याला छुपा दिया पर्दे के पीछे। जैसे आप जाने के भगवान का दरवाजा है, दरवाजा के पीछे पर्दे हैं, तो पर्दे के पीछे भगवान ने खीर का प्याला छुपा दिया और छुपा दिया। और पुजारी के सपने में कहा, मैंने खीर का प्याला पर्दे के पीछे छुपाया है, तुम इसे लेकर बाजार में जाकर आनंदपुरी नाम का एक भक्त है उसे पूछा लेना। पुजारी को जब ये सपना आया, पुजारी ने कहा, भगवान ने खीर का प्याला छुड़ा कर छुपाया है, असंभव, नॉट पॉसिबल, भगवान ने कैसे कर सकते। खैर जी ने भगवान को जगा कर देखा, क्या देखा, सच था, ठीक है, गलत था वो देखिए। परमात्मा कोई कौन है इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था। किसके पास, पुजारी के पास। तो पुजारी को जाने गए, यहाँ कोई भानुपुरी नाम का भक्त है क्या। भानुपुरी ने जब सुना उनका नाम पुकारा जा रहा है, उन्होंने कहा, यस मैं हूँ भानुपुरी। पुजारी ने कहा, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आपकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया था। और जब मानवी इच्छा थी मानवपुरी की टेस्ट करने को मिले चखने को, जब आनंदपुरी को सूचना मिली कि खीर का प्याला उनके प्राप्त है, तो नाचने लगे खुशी में। पुजारी समझ पाए, हाँ अब मैं समझा भगवान ने क्यों इसके लिए खीर प्याला छुड़ाया। आनंदपुरी के मन में एक भय उत्पन्न हो गया, भय ये था, उन्हें पता लगे, अगर लोगों को पता लग जाए कि आनंदपुरी के लिए भगवान ने खीर प्याला छुड़ाया था, तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे। जो भगवान के भक्त हैं वो प्रशंसा नहीं चाहते, आदर नहीं चाहते, खुशामद नहीं चाहते। और हमें क्या चाहिए, हाँ हम लोग जवाब नहीं दे रहे, हमें तो आदर चाहिए, नाम चाहिए, करेक्ट, हाँ नाम नहीं मिले तो कई बार किसका नाम छूट जाता है नाम लेने में, सुनना पड़ता है, वहाँ नाम भूल गए आप। कृष्णा कविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चैतन्य कर दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने विनती की है, मैं नाम ही मत लो, मैं नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे, मेरा नाम ही तुम मत लो। हमारे कई वैष्णव आचार्य हैं जिनके विषय में आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पले, कहाँ क्यों, क्योंकि ये जो महान आचार्य थे वो चाहते नहीं थे कि भविष्य में कोई उनका गुणगान करे। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कोई सूचना छोड़ी नहीं, इसलिए कई आचार्या हैं हमारी संप्रदाय में, उनके विषय में कितना भी आप खोजो कुछ भी प्राप्त कर सकोगे, ये थी उनकी विनम्रता। और कृष्णा ने लिखा, मेरा नाम मान लो। तो महादानंद हुई, उनके मन में यह भय था आज जब यमुना के भक्तों को पता लग जाएगा कि मेरे भगवान ने खीर चुराई थी तो सब मेरी खुशामद करेंगे। तो भागे वहां से यमुना से कहा जन्नत हुई। पर चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि आदमी के जो अच्छे कार्य है नाम वो उसके साथ ही जाता है। हालांकि माधव पुरी ने किसी को बोला नहीं, जगन्नाथपुरी में पूरी सूचना पहुंच गई कि यह वो प्रसिद्ध भक्त जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खींच रहा है। तो माधवपुरी ने सब जगह गोपाल की कथा सुनाई और कहा केशवदास गोपाल जी प्रकट हुए। तो जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने सहयोग दिया क्या लाने के लिए, उन्होंने एक ब्राह्मण भक्त दिया, एक और सहयोग व्यक्ति दिया 80 पाउंड चंदन, 82 पाउंड चंदन माधवपुरी को दिया। उन दिनों में मेरी चुनियां थी मुसलमानों के हाथ में थी, वो हिंदू पुजारियों को बहुत तंग करते थे। तो जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने पत्र दिया कि चंदन हम भेज रहे हैं। तो माधवपुरी 80 पाउंड चंदन खुद उठा रहे थे। एक तो उन्होंने 1000 मील से लंबी यात्रा की कहां गोदान से कहां तक जगन्नाथपुरी पैदल, बिल्कुल पैदल। आपने यात्रा करनी हो तो आप ट्रेन में जाओगे या ट्रेन में जाओगे, माधवपुरी पैदल गए। तभी वापस लौट रहे थे जगन्नाथपुरी से गोवर्धन, हम रास्ते में वो रुके तो यमुना में रुके। अब तो उनका पुजारी से परिचय हो गया है। जब पुजारी ने देखा माधवपुरी वापस लौट गए, इतना भारी वजन उठा रहे हैं अपने कंधों में, तो पुजारी ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। अब तो जान बचान हो गई थी, तो वो पहली बार आए जान बचा नहीं थे। तो उस दिन रात को माधवपुरी को फिर से एक सपना आया और उस सपने में गोपाल विग्रह ने आदेश दिया। गोपाल विग्रह कौन से विग्रह थे, किधर के गोवर्धन के, जिनकी खुशी के लिए माधवपुरी आगे गए थे चंदन लाने के लिए। गोपाल विग्रह ने कहा माधवपुरी से, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो तुम चंदन को इतनी दूर लाने की बजाय ये चंदन को इस्तेमाल करो गोपीनाथ की सेवा में। और जब लोग गोपीनाथ की सेवा में उपयोग करोगे चंदन को, तो गोपाल ने कहा जब तुम ये चंदन को गोपीनाथ के शरीर में लगाओगे तो इसके द्वारा गोपीनाथ का शरीर तो ठंडा होगा ही, तो मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा। तो ये चंदन को इधर उठाता मतलब माना पूरी सुबह सब पुजारियों को बुलाया, भगवान ने सब जगह कहा है ये 80 करोड़ चंदन मैं आपको दे दू और मैं आपको बस से सिखाऊंगा चंदन भगवान में कैसे लगाते हैं। पुजारी तो बड़े खुश हो गए, इनको याद दिला करके 80 करोड़ चंदन नागर राजधानी के लिए आप भी खुश हो गए। तो मानस पूरी फिर 3 हफ्ते के लिए रुके रेमना में और रोज पुजारियों को सिखाते थे भगवान को चंदन कैसे लगाया। ये है संक्षेप में इतिहास जिसके द्वारा इन चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हुआ और आप सारे वैष्णव मंदिर में वृंदावन में भी 3 हफ्ते के लिए भगवान के छोटे विला को चंदन से सजाते हैं। कई बार बड़े विला को भी चंदन से सजाते हैं। मानवपुरी की कथा में आप देखते हो कि भगवान ने 3 बार सपने में आदेश दिया। कितनी बार?
3 बार।
क्या आदेश? अलग अलग। पहले मुझे मेरी स्थापना करो, फिर चंदन लेने जाओ, फिर चंदन जो दिया मतलब गोधन। तो आप सोचोगे भगवान ने मान लिया पूरी बार सपने में आने दिया, ये तो बहुत सरल हो गया अध्यात्म जीवन। हमें भी सपने में इनको ज्यादा अलग आदेश आता है, हम भी इसका पालन करें। इसका क्या उत्तर है? करें या नहीं करें? हाँ या ना? ना। हमारे मन बुद्धि से कोई विश्वास नहीं, मन का नहीं है ठीक है वो ठीक है। आनंदपुरी ऊंचे कोटि के शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान ने सपने में आदेश दे पाए। अगर हम सोचेंगे हमें कल से सारे आदेश सपने में मिलेंगे तो फिर हमारा भक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें ये भी सोचना चाहिए आनंद पूरी को सपने में आदेश दिया हमें भी मिले। दूसरा संदेश यह है भगवान ने आनंद पूरी की परीक्षा ली, उन्हें कहा कि चंदन लाओ मेरे लिए और चंदन लाने के लिए 1000 मील की लंबी यात्रा उन्हें करनी पड़ी। तो कई बार जब आप भक्ति में जुड़ते हो आपकी परीक्षा ली जाती है, हम सबकी परीक्षा ली जाती है रोज, एक परीक्षा लेते हैं भगवान आपको ऐसा कार्य देंगे करने के लिए जितना एहसान ना हो। देखते हैं कितना दिल भाव है इसमें। दूसरा हमारी भी परीक्षा ली जाती है, माया परीक्षा लेती है, माया रोज प्रयास करती है हमें विचलित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो भगवान ने हाँ पूछेंगे माया प्रयास करके आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रंथ मिलन सीधा उपाय है, जैसे भगवान कहते हैं देवेश गुणमाय मामा माया दुरा दया, मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है, जो मेरी शरण में आता है वो विरोध कर सकता है। तो इसी प्रकार हम सभी परीक्षा ली जाती है माया के द्वारा और हमें हमेशा सामना रहना चाहिए। संक्षेप में ये कथा वैसे चेतन चेतन विधा में है और ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ था मानवपुरी के शिष्य के मानवपुरी के द्वारा। मानवपुरी से अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली थी, मानवपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य थे परम्परा। तो हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं परम्परा के आधार पर मानवपुरी की चंदन यात्रा की प्रेशर नहीं किसका। कोई प्रश्न? वो बिना ये समझना तो आरम्भ है, वो वर्णाचार्य संप्रदाय के सदनियों द्वारा उनकी नहीं बात पड़ी। बड़ा लंबा इतिहास है, कई जगह से रुकते आए, पूरा इतिहास में मेरी अंदर काफी लंबा इतिहास है।
भगवान के जो लीलाएं हैं और संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर देखा जाए तो उसमें आकर्षण भगवान की लीलाएं और संदेश सुनने का अपना नहीं रहता, तो आकर्षण भगवान के संदेश में कैसे बढ़ा सकते हैं?
आकर्षण भगवान की लीलाओं में नहीं है, आकर्षण हरि नाम में नहीं है, आकर्षण गीता के संदेश में नहीं है, भगवान अवतार होते हैं नदी में जाती है, प्रसाद के होकर नदी नहीं आती, तो आकर्षण नहीं है। इस विषय का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं कि उपदेश में रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की लीलाएं चीनी जैसे मीठी है, भगवान के गुण चीनी जैसे मीठे है, पर हमारे जीव में अविद्य की बीमारी है। जैसे अपने जीव में अगर छाले हो कितना ज्यादा भोजन हो टेस्ट नहीं आता, तो कहते हैं अगर हम मेरे में जाप करेंगे तो छाले दूर हो जाएंगे, उसके द्वारा माया की मैल निकलेगी, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए भगवत अभ्यास में रोज आना चाहिए, ये लग रहा है मैं तो रोज बोल जाता है। ओके, और वहाँ का क्वेश्चन देना पूछता हूँ और चाहे I'm sorry, it's very आपका भाग्य ये है कि आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में वकील लगभग ज्यादा भोजन नहीं मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में दिन में तीन दफा प्रसाद मिलता है, बड़ा ऑर्गेनिक प्रसाद, थलासरी फार्म से सब्जियां आती है। तो क्योंकि हमें पता है अगर मानने कोई की शिक्षा का कहेंगे अपनाने को आप सब मंदिर खाली कर दोगे, हम चाहते थे कि आप मंदिर खाली करो, इसलिए आपको माँ प्रभु जी की कृपा से लगभग रोज ही भंडारा मिलता है। It is called every day is feasting. Is that right? So, पर कहने का तात्पर्य यह है जो हमें मिलता है प्रसाद मिलता है सुविधा मिलती है हमें इसे संतुष्ट रहना चाहिए, ये नहीं अरे आज दो सब्जी मिली तीन सब्जी मिलनी चाहिए, रोज पनीर की नहीं मिलती, वो समोसा की नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से संतुष्ट हो, बी सैटिस्फाइड व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। ओके, यस, लवली लवली, One or two more questions, that's all. जो गौ प्रेम उनको चाहिए उनको मिलता है, उनको भक्त संग चाहिए उनको मिलता है, जिनको गौ प्रेम चाहिए ही नहीं क्या किया जाए। जिनको बाबा जी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, इतनी सुंदर मूर्तियों की स्थापना की, बाबा जी ने कहा हेवन ऑन अर्थ, तो अगर हमारे सबके मन में भाव हमें गौ प्रेम चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, बिना शंका के आपको प्राप्त होगा। तो अगर हमें चाहिए ही नहीं तो क्या करोगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है, दूसरों में कमी देखना सबसे आसान रास्ता है। तो ये कमी है, तो ये कमी है, कई लोग तो 50 किताबें लिखने की दूसरों की कमी है, अपनी कमी उन्हें देखती नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि दूसरों की कमियां देखने से पहले पहले अपनी कमियों को देखो। तो गौ प्रेम मिलता है, अगर लोगों को गौ प्रेम नहीं मिल रहा होता तो मंदिर खाली होता। ये मैंने क्या सारे स्कूल के मंदिर खाली होते, आप हर प्रोग्राम में हजारों भक्त देखते हो, रशिया जैसे जैसे देश में जब हम उत्सव कर रहे हैं तो 9-10 हजार रशियन लोग आते हैं, तो गौ प्रेम मिल रहा है तो ही आते हैं ना। गोपे पैसे एक समय प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे डैलस में, तो प्रभुपाद ने कहा जब मुसलमान लोग भारत में आए तो उन्होंने जबरदस्ती लोगों को धर्म को बदला, तुम धर्म बदलो देखो। जब क्रिश्चियन लोग आए भारत में प्रभुपाद ने कहा उन्होंने रिश्वत देकर लोगों के धर्म को बदला, प्रभुपाद ने कहा आई एम ओल्ड मैन, मेरा बुरा व्यक्ति तुम्हारे देश में आया हूँ, ना पैसे के साथ ना तलवार के साथ, नहीं तुम लोग ले रहे हो, क्यों? कृष्ण गॉड अट्रैक्ट है, भगवान सर्व आकर्षक है, हमें केवल प्रयास करना चाहिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर? Okay, thank you very much. Hare Krishna.